यदा विद्वान, यदा पश्य विद्वान पश्यतीति पश्य, जो देखता है, देखता है मानी क्या, समझता है। ये गम धातु जो है ना, वो हमेशा किसी गति के रूप में उसका उपयोग होता है। आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट, है ना, आई गॉट इट, ऐसे होता है। आपकी बुद्धि में प्रवेश किया कि नहीं इस बात ने, हाँ मुझे अंदर घुस गया, ऐसे कहते ना, अंदर आ गया। इसलिए पश्यति, जानता है, समझता है, किसको, यदा पश्य पश्यते, देखता है किसको, पुरुषम, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम। रुक्म वर्णम होता है सुवर्ण का। सुवर्ण में तीन गुण है, एक तो उसको कभी झंक नहीं लगता है, डज नॉट गेट रस्टेड, मैलिएबल, और तीसरा है उसका जो चमाचम चमक है वो कभी जाती नहीं है। पित्तल की जाएगी, सबकी जाएगी, चांदी की जाएगी, पर ऑलवेज शाइनिंग, कर्ण सुवर्ण। अव्यय, इसी प्रकार से आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा कभी विकृत होता नहीं है, जंक नहीं लगता है, विकृत नहीं होता है, और उसका जो चैतन्य स्वभाव है उसमें कभी आगे पीछे नहीं होता है, वो समान चैतन्य रूप ही देता है। जागृत हो चैतन्य रूप, स्वप्न हो चैतन्य रूप, सुषुप्ति हो चैतन्य रूप, कभी जड़ नहीं होता है, चित अचित नहीं होता है, स्वप्रकाश सर्वावभासक है, अन्य प्रकाश निरपेक्ष है। ये तीन लक्षण सिर्फ चैतन्य आत्मा में ही होता है। सो यहां कहा, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, जो स्वयं ज्योति है। अब आप देखिए, हम लोग को जो ये रंग दिया गया है ना, पहनते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑरेंज, इस रंग का नाम है। मैं अमेरिका गया, पहली बार देखा एक पूरी ट्रक भर के कई लोग एक कपड़े पहन के जा रहे थे। हमको लगा सब साधु लोग होंगे इतने, कि नहीं, रोड पे काम करने वाले जितने मजदूर हैं इनको ये रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। क्यों, ये जितने रंग है इसमें सबसे पहला अपनी आंख को कौन सा रंग मालूम पड़ता है, ये गेरुआ रंग ऐसा है, फर्स्ट यू साइट दैट। इसलिए कहीं अकस्मात ना हो जाए, लोग पहले से देख ले, इसलिए उनको पहनाया जाता है कैची कलर, इंटरनेशनल ऑरेंज। इसी प्रकार से कोई भी अनुभव हो, सबसे पहला कौन होता है, चैतन्य। मैंने देखा, मैं चैतन्य ने देखा, सुना चैतन्य ने सुना, सभी अनुभव में अनुगत अनुसूत है स्वप्रकाश। एक लक्षण सुन लेना, व्याप्ति है इसे, यत्र यत्र व्यवहार तत् तत् व्यवहार तद् व्यतिरिक्त, तद् व्यतिरिक्त ज्योतिर अधीन है। यत्र व्यवहार तद् व्यवहार तद् व्यतिरिक्त ज्योति ही अधीन है। इसको कहते व्याप्ति, कुछ प्रत्यक्ष में देख के हम उसका नियम बना लेते हैं। जहां जहां धुआं होता है
वहां वहां क्या होता है अग्नि, ये क्या होगा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। इसी प्रकार के जहां भी व्यवहार होगा वो व्यवहार चैतन्य के अधीन ही होगा। चैतन्य के बिना व्यवहार की सिद्धि होती नहीं है। फिर पूछा व्यवहार क्या होता है, शब्द उच्चारण तत्स्फुरणम व्यवहार है, आदान प्रदान व्यवहार है ना, शब्द को उच्चारण करो और मन में वो शब्द का अर्थ दिखे, इसी का नाम भी व्यवहार है। घड़ा तो मन में घड़ा दिखता है, गैया मन में गैया दिखती है, या कुछ लेन देन, आंख से देखा हाथ से पकड़ा लेन देन। तो जागृत में व्यवहार है, लेन देन है, स्वप्न में भी लेन देन है, तो वो व्यवहार किसके अधीन है, चैतन्य ज्योति के अधीन है। सुषुप्ति में भी व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जगने पे मैं कहता हूं मैं कुछ जानता नहीं था, खूब सुखी था, इसलिए वहां भी कुछ है व्यवहार, वो भी किसके अधीन है, चैतन्य ज्योति के अधीन है। और दूसरा वो चैतन्य ज्योति उस व्यवहार से बिल्कुल निराली है, स्वतंत्र है। तो यहां का यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, और देखो बहुत बढ़िया बात है, कर्तारम, कर्तारम का अर्थ क्या होता है, अपनी कर्मेंद्रियों में विषय रूप फल की प्राप्ति के लिए संकल्प पूर्वक जो कर्म अहंकार करता है उसको क्या कहते हैं, कर्तृत्व, डूअरशिप। हमको फल चाहिए, आम चाहिए, तो आम के लिए क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और आम ले आएंगे खरीद के, इसको क्या कहते हैं, कर्तृत्व पूर्वक मुझे आम चाहिए इसके लिए मैं आम खरीद के ले आया, ये हो गया त्रिच प्रत्यय कर्तृत्व। और मैं अपने को क्या मानता हूं, मैंने ही पौधा लगाया था, मैंने ही आम तोड़ा, मैंने ही आम बेचा, ये मेरे आम है, ये सब क्या है, कर्तृत्व, कर्तृत्व, कर्तारम प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा अहं कर्ता इति मन्यते। ठीक है, गीता में अहं कर्ता, कर्तारम। अब देखो यहां उपनिषद में क्या बढ़िया बात बता दी, कर्तारम ईशम, ये कर्ता ही परब्रह्म है, ईश्वर है, इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में बाध सामानाधिकरण्य, बाधायाम सामानाधिकरण्यम। जब मैं कहता हूं अरे भाई ये भूत नहीं है, ये तो लकड़ी का खंभा है, भूत लकड़ी का खंभा है, इसका अर्थ क्या हो गया, भूत का बाध हो गया और कौन बचा, लकड़ी का खंभा। तो इसमें एक का निवृत्ति हो जाती, दूसरे की सिद्धि हो जाती है। कर्तारम ईशम, ये कर्ता जो आपको अनुभव में आ रहा है वो कर्ता ही परब्रह्म है, तो किसका बाध हो गया, कर्तृत्व का बाध हो गया, क्योंकि कर्तृत्व परब्रह्म है, कर्ता रमीशम। और क्या उसका स्वरूप है? पुरुषम। संस्कृत में पुरुष शब्द का अर्थ एक है और भाषा में दूसरा होता है। स्त्री पुरुष ये लिंग भेद है, पर यहां पारिभाषिक रूप में पुरुष शब्द का होता है पुरी पुरो उषति वसति इति पुरुष है। ये नगरी है जगन्नाथ पुरी, इस प्रकार से इस नगरी में जो निवास करता है, जिसके कारण ये नगरी काम कर रही है, उसको कहते हैं पुरुष है। दूसरा अर्थ किया गया है पूर्णत्वात् पुरुष है, पुरुषोत्तम है, गीता में भी आए हैं। पूर्ण जो है उसी का नाम है पुरुष है। यदा विद्वान पश्यते, किसको? रुक्म वर्णम स्वयं ज्योति कर्तारमीशम। कर्तार को छोड़ के क्या है? कर्ता का रूप छोड़ के क्या है? वो कर्ता का सच्चा रूप क्या है? ईश है, ईशनशील है और पूर्ण है। ब्रह्म योनि बहुत स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मणश्च योनि, जिससे ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ भी प्रकट हुआ वो ब्रह्म, या जो ब्रह्म भी है ब्रह्मश्च योनिश्च। योनि मणि कारण, जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भी है और जगत की उत्पत्ति का हेतु भी वही ब्रह्म है। ब्रह्मश्च योनिश्च ब्रह्म योनिम। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। अब पराविद्या तो आ गई, अब पराविद्या का फल बताते हैं। वेद मुक्ति का वर्णन स्वयं करता है, उपनिषद। सभी जीव बद्ध है, जहां जीवत्व है वहां बंधन है। बंध का नाम होता है जिससे हम छूटना चाहते हैं उसी को बंधन कहते हैं। ये बात समझ लो, फ्रॉम वॉट यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। जिससे हमेशा हम प्रयत्न करते कैसे छूटे, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। अगर आप जेल में हैं तो क्या चाहते हैं? अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? बोलो भाई, इतना तो मालूम होना चाहिए। काराकार जेल में हुआ था। एक महात्मा जा रहे थे ट्रेन में बिना टिकट, किसी ने पूछा महाराज कहां जाना है? टिकट नहीं है कि? नहीं है। कहां जाना है? राम जन्मभूमि। तो टिकट चेकर ने बताया आपको कृष्ण जन्मभूमि ले जाएंगे। बोली क्या? जेल में ले जाएंगे आपको, जेल में। सर, जेल से हम छूटना चाहते हैं, बंधन, रोग से छूटना चाहते हैं, बंधन। कन्या राशि वाले शनि दशा से छूटना आजकल चाहते हैं। क्यों? उनको शनि दशा बता रही है। तो जिससे हम छूटना चाहते हैं वो क्या है? बंधन। कभी कभी हम अमुक आदमी से भी छूटना चाहते हैं, भैया ये जाए तो बहुत अच्छा। कहीं मेहमान घर में आते तो यही प्रार्थना करते, भगवान ये लोग कब जाए, है ना। अपने बॉस से भी छूटना चाहते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, आसाम, उसको भेज दो आसाम में। क्यों? इसको कहते हैं जिस जो दुखदाई है उससे छूटना चाहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता है प्रेमपुरी में आके हम स्वामी जी अपने पैसे से छूटना चाहता है, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। पैसा तो हमको चाहिए, उससे छूटना नहीं है। तो दैट विच इज अ प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ। बंधन वेदांत में क्या है? अपने आपा के विषय में आपकी जो मान्यता है उससे ही आप छूटना चाहते हैं। आपने अपने आप विषय में कुछ धारणा बना ली है कि मैं मरने वाला हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, दुख से छूटना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, ये दुखी पना से छूटना चाहता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, छोटे जी हूं, छोटे जी नहीं रहना है पर छोटे जी हूं क्या करूं, दुख एक बंधन स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। तो ये बंधन की निवृत्ति जो आत्ममूलक है, आत्मा में अधिकृत है, आत्मा में है, मैं बद्ध हूं, मैं दुखी हूं, तो इसकी निवृत्ति होती है इस ज्ञान से, अपने स्वरूप को पहचानने से। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। देखो भाई, न किसी ने पाप को देखा है न किसी ने पुण्य को देखा है। क्या रंग है पाप का, क्या स्वाद है पाप का, पाप की आवाज कैसी आती है, कुछ नहीं देखा नहीं है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है। इस कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होगी, ये बात शास्त्र के सिवाय कोई नहीं जान सकता है। गो हत्या से पाप की उत्पत्ति होगी और गोदान से पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भोजन खिलाएंगे, विद्या प्रदान करेंगे, पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भूखा रखेंगे, घर में आए को खिलाएंगे नहीं, तो क्या होगी, पाप की उत्पत्ति होगी। तो शास्त्र के द्वारा किस कर्म से पाप पुण्य नाम का अदृष्ट उत्पन्न होता है उसके लिए वही प्रमाण है। पाप पुण्य को अदृष्ट का है, क्यों, न दृश्यते, दिखता नहीं है, इसलिए क्यों नहीं दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अदृष्ट। क्यों अदृष्ट है, क्योंकि दिखता नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, पूछना है अभी और आगे, अदृष्ट है। अभी पर उसका जो पर्यवसान फल है वो दिखता है। जीवन में ऐसी परिस्थिति, अनकंडीशनल सिचुएशन, प्रतिकूल संयोग, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति से मालूम पड़ता है ये किसका फल है। हाँ, कई लोग का पैसा किसी ने ले लिया, वापिस देने का नाम नहीं है, और हमारा पैसा होने पर भी घर में क्या है, पैसा नहीं है खर्च करने को, ये स्थिति कौन सी हो गई, प्रतिकूल। किसका फल है, मानना पड़ेगा पाप का फल है। जिस ट्रेन में मैं बैठा उसी को अकस्मात हो गया, ये क्या है, प्रतिकूल। हाँ, अनुकूल, ठीक है, सब बहुत सब लोग जानते, सुख दुख तो को बहुत मालूम है, पर ये किसका फल है, पाप पुण्य का। कभी कभी दोनों का मिक्सचर भी आता है, इसको मिश्र फल कहते हैं। बहुत बढ़िया चावल खाने को मिला, आहा बासमती चावल, खाते खाते बीच में कंकड़ आ गया, ये क्या है, और 3 फुट का बड़ा लंबा बाल भी निकला उसमें से, ये सब क्या है, पाप मिश्र। जीवन में दोनों होता है, कभी कभी पुण्य कभी कभी पाप, दोनों चलता है। तो कार्य से अनुमान करते हैं कि ये पाप का फल होगा, ये पुण्य का फल होगा। और एक दूसरी बात देखिए, हमारे अकाउंट में पाप पुण्य कितने हैं, है? चित्रकूट भी पागल हो जाएगा, इतना है, अनंत है। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे भगवान, मेरी मुक्ति करिए संसार से, कि मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। कि क्या पुण्य कर्म किया है गोस्वामी जी आपने, कि मेरे पाप पुण्य का हिसाब इतना लंबा था कि चित्रगुप्त देखते देखते इतने उलझ गए उसमें, कि उस समय भव रोग से कई जीव छूट के भाग गए तो मेरे कारण इन लोग की मुक्ति हो गई, उसका फल के रूप में आप मुझे मुक्त करो। देखो इतना बड़ा अकाउंट है, इन्फिनिट। ओके, पाप पुण्य के जीव अनादिकाल से, पाप पुण्य भी कितने हैं उसको देखना। ये ज्योतिष लोग क्या जानते हैं, एक जीवन का थोड़ा फलादेश कर देते, बड़ी बड़ी बात करते, कुछ नहीं है, इन्फिनिट। और इसको भोगना है तो कितना जन्म लेना पड़ेगा, अनंत जन्म तक। देखो आप लोग, मैं मानता हूं सब जो यहां थे भले लाल पीले कपड़े न पहनते हो, यहां के रोज आके बैठते हो, आप लोग साधु है। साधु माने जिज्ञासु है, सब कुछ छोड़ के सीधे साधे लोग हैं। कोई भी कपड़ा हो मैं उसको देखता हूं, मैं साधु मानता हूं आपको। तभी ये पाप पुण्य के चक्र में ज्यादा न पड़े, ये पुण्य करिए, सब छोड़ो। सबसे बड़ा है ये पाप पुण्य, सब प्रकार के पाप पुण्य हर हमेशा के लिए कैसे छूटे, इसका उपाय है ये ब्रह्म विद्या। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा माना जाता है, ब्रह्म विद्या, पराविद्या। इसकी सेवा करो और किसी की नहीं। अभी ये पाप पुण्य को जमेरा को छोड़ो, जो कि त्यों दर्दी चदरिया। तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय, विदुनोति, सब पाप पुण्य से वो मुक्त हो जाता है, अनंत कोटि के पाप पुण्य से। अभी एक बात और है, कोई प्रायश्चित कर्म करके पाप से छूट सकता है, पर प्रायश्चित कर्म करके पुण्य से छूट सकता है, वो तो धरे रहेंगे। इसलिए इसका बहुत चिंतन करना है। तो गीता के 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य के भाष्य में शंकराचार्य ने बहुत भारी चर्चा की है, वो देख लेना, समय अभाव से मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तदा विद्वान पुण्य पापे विदुह्य, सब पाप पुण्य उसका जल गया, जल गया थे ही नहीं। एक दिन मुझे महाराज श्री अखंडा जी महाराज ने, महाराज ने बताया, बेटा महात्मा का आगे जन्म नहीं होता ये तो ठीक है, पर उसका पूर्व जन्म भी नहीं था ये महात्मा जानता है। आत्मा की दृष्टि से न उसका पूर्व है न अपर है, दोनों से मुक्त है वो तो। तदा विद्वान पुण्य पापे विदुय निरंजन है, जिसमें माया विद्या का लेश नहीं है, ऐसे आत्मा को साम्यम उपैति प्राप्त करता है। न भी उसको माया छू सकती है, न विद्या छू सकती है, न कर्म छू सकते हैं, न जन्म छू सकते हैं, न गति आगति छू सकते हैं। इस प्रकार की पूर्ण मुक्ति किसको प्राप्त होती है, विद्वान को। और अविद्वान का क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और उपनिषद बहुत बढ़िया बताती है, मृत्यु से मृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। जन्म से जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु की। मृत्यु दुखदाई है, बारंबार जाता है एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, क्या है इससे छूट जाता है कौन, विद्वान। अविद्वान वही चक्कर काटता रहता है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि आप भी विद्वान बनो। एक बात याद रखना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई मुझ वासुदेव के स्वरूप को आत्मा के रूप में पहचानता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। जब भी कोई ये वाक्य सुनता है तो मन में क्या होता है, मैं तो अभी तक हुआ नहीं हूं, कब मैं वासुदेव को पहचानूंगा, कब मेरा ऐसा जन्म होगा। अरे भाई, ये जो वाक्य सुनने वाला है उसके बहुत जन्म हो चुके हैं, ये सुनने वाले का अंतिम जन्म ही होना चाहिए, नहीं तो कहां से सुनेगा ये। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ऐसे होता है, हमको अपने को शुद्ध करना है, इस जन्म में हमको बोधिसत्व नहीं प्राप्त है। जब हम शुद्ध होंगे तब, हर जन्म में क्या सोचते हैं हम शुद्ध होंगे तब, तब कब शुद्ध होगे भाई? वेदांत ये नहीं है नगद, ये सुनने वाला का ये अंतिम जन्म है क्योंकि ये सुन रहा है। आप ये सब सुन के ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, मानी अभी आपके बहुत जन्मों का फल मिल चुका है। ये मेड इट बहुनाम जन्मनामंते, इसका फल यह है। इस प्रकार से यहां मुझे दो दिन प्राप्त थे और दो क्लास में एक दिन अपराविद्या पराविद्या दोनों का वर्णन हो गया। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन करते हैं। जभी जभी पधारते हैं आनंद लेके आते हैं, दुनिया भर में घूमे और यही आनंद, खाली प्रेमपुरी। इतने हम सेल्फिश न बने, स्वार्थी न बने कि खाली प्रेमपुरी। प्रेमपुरी में से कई संत इसी तरह से जाए और बहुत अच्छा कार्य करे, और उसी के साथ प्रेमपुरी का भी नाम हो और संत लोग का जो भी ज्ञान विद्या है दुनिया भर को मिले, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो महाराज जी को फिर से आप सबकी तरफ से हम प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह जो आखिरी एक वाक्य आपने सुना हो, तो उस एक वाक्य में उन्होंने अपने आशीर्वाद बहुत ही अच्छी तरह दे दिया है। तो फिर से महाराज जी को प्रणाम करते हैं।